बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की अहलियत का तनाज़ा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में कौमी असम्बली की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने जुमेरात को फैसला सुनाया कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने इसी के साथ रूलिंग दी है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से वज़ीर आज़म की अहलियत पर कोई हर्फ नहीं आता। उन्होंने अपने फैसले में यह भी ऐलान किया है कि यह तासुर गलत है कि स्पीकर कौमी असम्बली अदालत का रेफरेंस इंतखाबी कमीशन को इरसाल करने का पाबंद है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर का मनसब तमाम रियासती इदारों की जानिब से एहतराम का मुतकाजी है और वो महज पोस्टमैन का किरदार नहीं अदा करता। स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि उनके पास कोई रेफरेंस आता है तो वो उसी शक्ल में चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की पाबंद नहीं है, बल्कि स्पीकर को मुनसिफाना फैसला करना होता है कि नाअहली का सवाल पैदा होता है या नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल न करार देते हुए जावेद हाशमी केस का हवाला दिया और कहा कि 2004 में जावेद हाशमी अदालत से सजा याफ्ता थे और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें शौकत अजीज के मुकाबले में वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया था। कागजात नामजदगी की मंजूरी के वक्त जब यह सवाल उठा कि जावेद हाशमी सजा याफ्ता हैं और वो ऐवान की रुकनियत और वजारत उज़्मा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उस वक्त के स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने रूलिंग दी थी कि जावेद हाशमी न सिर्फ ये कि ऐवान की रुकनियत बल्कि वज़ीर आज़म के ओहदे का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और इस तरह उन्होंने नाअहली का सवाल ख़त्म कर दिया। स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा के इस फैसले के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील न करने का ऐलान किया है और हुकूमत, हुक्मरान जमात और इत्तेहादी पार्टियों ने इस फैसले को जमहूरियत की जीत करार दिया है, जबकि अपोजिशन ने इस पर सख्त एतराज़ किया है और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम भी आयद किया है। हिज्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने इस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए कहा है कि स्पीकर ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर कंदील अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
कंदील अब्बास साहब, स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले के बाद पाकिस्तान के सियासी खेमों में क्या हो रहा है?
देखिए, जो वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के केस के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है, उसके मुताबिक अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुतफिका फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी किस्म की अपील दायर नहीं की जाएगी। जो वज़ीर आज़म के वकील थे एतज़ाज़ अहसन, उनका कहना है कि उन्होंने 146 नुकात पर मबनी अपने एतराज़ात पर मबनी एक अपील तैयार कर रखी थी, लेकिन पार्टी के एक मुतफिका फैसले के तहत अब वो इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाएंगे और वो स्पीकर की उसी रोलिंग पर इक्तफा करेंगे जिसके तहत उन्होंने वज़ीर आज़म की नाअहली के मसले को ख़ुद पार्लियामेंट के अंदर हल करने की बात की और कहा है कि अब वो नाअहल नहीं है और ये जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा जाएगा। अब इस बुनियाद पर एक इंतहाई पेचीदा कानूनी बहस शुरू हो चुकी है और जिसके तहत अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था और पार्लियामेंट की जो स्पीकर की रूलिंग है वो या फैसला है वो सही है। एक तो ये नुक्ता उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि क्या जो पार्लियामेंट की स्पीकर ने रूलिंग दी है ये हतमी है या इसको भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अब इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज के दिन में हमने देखा एक बहस मुबाहसे का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये है कि हुकूमती जो बेंचेज हैं उनमें ये एक इत्मीनान पाया जाता है कि स्पीकर की रूलिंग के बाद अब वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। लेकिन एक और बहस इसमें जो हुकूमती बेंचों से भी सामने आई है, हुकूमती साइड से भी सामने, वो ये कि स्पीकर की रूलिंग आने के बावजूद उनकी जो वज़ीर आज़म की सज़ा है वो कल अदम करार नहीं दी जा सकती क्योंकि वो सज़ा उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी है और उस सज़ा को कल अदम करार देने का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। लेकिन अब इस सज़ा की बुनियाद पर वो अहल हैं या नाअहल होते हैं इसका फैसला पार्टी के मुताबिक अब स्पीकर की रूलिंग के बाद हो गया है कि वो अहल हैं, लेकिन अब आइंदा इलेक्शन में क्या वो दोबारा इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं क्योंकि वो सज़ा याफ्ता शख्स हैं, इसके ऊपर भी एक कानूनी बहस का आगाज़ हुआ जाता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और हमारे लंदन स्टूडियो में बरसगीर के मुमताज़ दानश्वर कैसर इमाम साहब मौजूद हैं। कैसर इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जनाब
कैसर इमाम साहब, स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या रुख अख्तियार करने जा रही है?
बहुत अच्छा सवाल है शाह साहब। जहाँ तक स्पीकर के फैसले का ताल्लुक है, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंध की जो हाई कोर्ट है उसमें इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है, मुद्दई ने ये कहा है कि ये फैसला गलत था और स्पीकर ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। अब इसका फैसला तो हाई कोर्ट में हो जाएगा कि क्या ये फैसला अदालत में किसी तरह से ज़ेरे समात आ सकता है या नहीं, अदालत को ये इख्तियार हासिल है या नहीं, और ये कि क्या स्पीकर का फैसला सही है या गलत है, ये किसी हद तक वहाँ फैसला हो जाने को है। अब दूसरी बात ये है कि ये फैसले की नौईयत जो है वो क्या है। असल बात ये है कि जिस फैसले पर स्पीकर साहब ने अपनी तरफ से ये हुक्म सादर किया है उसमें उसके अगर आप गौर करें तो उसमें सबसे पहली जो शिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वज़ीर आज़म को बहुत ही मुख्तसर सज़ा सिर्फ इसलिए दी गई है कि आइन की दफ़ा 63(1)(g) के तहत उनके साथ आइंदा जो कुछ होने वाला है उसके जो नतायज होंगे वो शायद बहुत संगीन होंगे, इसलिए अदालत बहुत ही मुख्तसर सज़ा पर कनात कर रही है। सो मैं समझता हूँ कि अगर अदालत ने एक तरफ से ये फैसला दे दिया कि आइन की 63(1)(g) जो है वो अप्लाई होती है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये मामला जो है ये भी तयशुदा समझना चाहिए कि अदालत की नज़र में वो नाअहल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये 63(1)(g) है क्या, उसमें ये कहा गया है कि अगर अदालत का मजका उड़ाया गया हो तो वो मुल्ज़म जो है वो नाहल साबित होगा। अब मजका उड़ाने के बारे में इत्तेज़ाज साहब का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अदालत में ये जुर्म जो है ये पेश ही नहीं हुआ और इसकी समाअत नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ अदालत ने अपने फैसले में इसका जिक्र कर दिया है कि मजका उड़ाया गया है। सो ये दोनों बातें एक तरह से इत्तेज़ाज साहब का मौकफ भी किसी हद तक दुरुस्त है कि वो जेरे समात नहीं आया, लेकिन अदालत की तरफ से ये कह देना काफ़ी है कि मजका उड़ाया गया है, सो ये फैसला तो हो चुका। अब इसमें जितने भी वकला हुकूमत के हामी हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सब मामला ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पर, लेकिन जो अपोजिशन के रहनुमा हैं और वकला हैं वो समझते हैं कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ आप जैसा कि जानते हैं ये इलेक्शन की मुहिम तो शुरू हो चुकी है हर जमात की तरफ से, तो उसमें ये मामला जो है इलेक्शन के मामला इलेक्शन मुहिम में इसको अहमियत हासिल है। सो अब जितनी देर तक इलेक्शन हो नहीं जाता ये मौजू जो है वो ज़ेर बहस रहेगा और इसमें हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा और वकला अपनी तरफ से ज़ोर लगाते रहेंगे। लेकिन बेसिक बात वही है कि एक तरफ तो ये कि ये मामला अदलिया ने जिस तरह से पेश किया है क्या स्पीकर ने उसे उसी तरह से लिया है? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं किया गया, स्पीकर ने उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि अदालत का मजका उड़ाया गया है और ये चीज़ जो है ये नाअहली के लिए काफ़ी है। दूसरी बात जो बहुत अहम है जिसकी तरफ अब तवज्जो नहीं दी जा रही वो ये है कि जिस बिना पर अदालत की तौहीन का मामला पेश हुआ था वो था खत लिखने या ना लिखने का मामला। सो ये मामला अब अभी तक वही है। सो मैं समझता हूँ कि इस बारे में अदालत को या इंतजामिया को अभी क्या रुख इख्तियार करना है इसके बारे में मैं नहीं, जो वकला हैं जो कानूनदान हैं वो बेहतर फैसला कर सकेंगे। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारा राबिता टेलीफोन लाइन के जरिए बरकरार हुआ है पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सज्जादुल हसन साहब से। सज्जादुल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब। स्पीकर के फैसले के बारे में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है और उनका फैसला गैर आइनी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
देखिए जी बात यह है कि मैं कोई लॉयर तो हूं नहीं
जी,
मगर एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते ये बात बड़ी वाजे है। ये इस वक्त जो सिचुएशन है जो टाइम है, चूंकि इलेक्शन जो है करीब है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉइंट स्कोरिंग पे लगी हुई है, इसके अलावा इसमें कतन कोई गैर आइनी बात नहीं है। ये स्पीकर की डिस्क्रिशन है, ये उसकी पार है। कोर्ट ने जब एक मामला जो है वो स्पीकर के हवाले कर दिया, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि 30 दिन का टाइम है किसी भी शख्स को, ये उसका बुनियादी हक है कि वो कोई भी डिसीजन है किसी शख्स के अगेंस्ट तो वो उसके खिलाफ फर्दर लार्जर बेंच में जाए, अपील करे। ये अभी तो उनका ये हक है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये अपोजिशन जमातों को ऐसी कौन सी जल्दी है, ऐसी क्या बात है कि वो इतनी तेजी में है कि जबकि आइन जो है वो इस बात की, कानून जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी आदमी है जो उसका ये बुनियादी हक है कि वो अपील करे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर के पास उनके अपील का हक महफूज है, वो अपील में जा रहे हैं। तो इस सारे नुक्ता नजर में, इस सारे सिनेरियो में स्पीकर ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल आईन और कानून को के मुताबिक है और उसके मुताबिक ही ये फैसला दिया है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पहली दफा ये जमहूरियत की फतह हुई है और इस जमहूरियत की खातिर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 40 साल से बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही तो वो पार्टी है जिसने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, जिसने हमेशा अदालतों का हुक्म माना है, चाहे बाद में उन फैसलों के बारे में जुडिशियल मर्डर ही क्यों ना कहा जाए। तो हम वो लोग नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के और कानून के आज जो है वो हम राग अलाप रहे हैं। हम हमारी हिस्ट्री गवाह है और हम हिस्ट्री की अपने लीडरों की पैरवी करने वाले लोग हैं और आईन और कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं और आईन और कानून की पाबंदी करेंगे हम लोग।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ ही कानूनदान भी बटे हुए हैं, कुछ हुकूमत के हामी हैं और कुछ हिजब इख्तलाफ के मौकिफ की हिमायत कर रहे हैं। इस दरमियान बाज कुछ गैर जानबदार कानूनदान भी हैं, और अगर हैं तो उनकी राय क्या है?
देखिए बिल्कुल, ये एक वाजह सी बात है कि जो कानूनी माहरीन हैं उनके दरमियान कई ग्रुप मौजूद हैं। आपने तो तीन का जिक्र किया, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा के भी ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए कि ये इसका ज़्यादा इन्हिसार वकला के ऊपर और कानूनी माहरीन के ऊपर नहीं है। ये एक बुनियादी बहस है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौजूद है और सियासत के तालिबे इल्म बेहतर जानते हैं कि एक चैप्टर वाज़ह तौर पर हमेशा ज़ेर बहस रहता है कि स्टेट बालातर है या कानून बालातर है, और इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर भी और हिस्टोरिकली भी एक बहस रही है हमेशा कि जब स्टेट कोई फैसला करती है तो वही कानून, यानी कानून के अंदाज में जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो वही कानून बन जाता है, तो वो इस बुनियाद पर कहा जाता है कि स्टेट कानून से बालातर है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि चूंकि जो खुद स्टेट है इसको चलाने के लिए भी कानून की ज़रूरत होती है, इसलिए स्टेट के ऊपर लाजम और वाजिब है कि कानून का एहतराम करे, और इस बुनियाद पर कानून बालातर है और स्टेट उसके तहत अमल करती है। अब ये एक ऐसी बहस है एकेडेमिकली और थ्रेटिकली जो पूरी दुनिया में मौजूद है और हिस्टोरिकली इस पर बहस होती आ रही है, और यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल पेश आई है वो इसी चीज़ का एक शाखसाना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है और वो पार्लियामेंट को भेज दिया गया है। अब पार्लियामेंट के अंदर ये बहस है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन के पास भेजना ये स्पीकर की ड्यूटी है या नहीं है। यहाँ पर फिर वकला के अंदर जो दो तीन ग्रुप हैं उसके मुताबिक ये है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो जो स्पीकर का रोल था वो जस्ट एक पोस्टमैन का रोल था, और उसका काम सिर्फ ये बनता था कि इस तरह के रेफरेंस को वो इलेक्शन कमीशन के पास भेज दें। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब स्पीकर को ये एक इख्तियार हासिल है कि वो अपना माइंड अप्लाई कर सकती हैं, और वो माइंड अप्लाई करके उसके मुताबिक डिसीजन ले सकती हैं कि वो ऐसा रेफरेंस आगे भेजें या ना भेजें, क्योंकि किसी भी मेंबर की अहलियत और नाअहलियत का फैसला स्पीकर के पास होता है। अब लेकिन इस तरह का डिसीजन आने के बाद जो नई एक राय सामने आई है वो ये कि स्पीकर का जो फैसला है या रूलिंग है वो पार्लियामेंट का कोई फैसला नहीं है और पार्लियामेंट में इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई है, एक रूलिंग है और उन्होंने ये बात की है, और इसको ऐसी रूलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट्स बताए जा रहे हैं, इंडिया में कई दफ़ा जो सुप्रीम जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे उनकी रूलिंग को कोर्ट्स में चैलेंज किया गया और उसके अगेंस्ट भी फैसले आए। अब इस बुनियाद पर ये टेक्निकल एक बहस है, यहाँ पर एक जो तयशुदा चीज़ नज़र आती है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी वैलिडिटी अपनी जगह पर मौजूद है कि तौहीन अदालत हुई और उसके बाद उसके ऊपर एक फैसला आया। लेकिन यहाँ पर दो लफ्ज़ों का एक डिफरेंस है, तज़हीक हुई है या तौहीन हुई है। एतजाज अहसन और इनके साथी वकला कहते हैं कि तज़हीक या ना तो केस सुप्रीम कोर्ट में चला है और ना इसके ऊपर फैसला आना चाहिए था, तौहीन की बात हुई, और तौहीन के नतीजे में चंद लम्हों की सज़ा वो इस चीज़ का बायस नहीं बन सकती बल्कि वो दो साल की सज़ा की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पीकर के किरदार का ताल्लुक है तो ये इख्तियार उनको हासिल है कि वो किसी रुकन की अहलियत या नाअहलियत के बारे में अपना एक राय दे सकें, लेकिन जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है वो अपनी जगह पर मैं समझता हूँ के बहाल रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जाता। और इन तमाम मामलों में जाहिर है कि कानूनी माहरीन के अपने अपने ग्रुप्स हैं और उनकी राय सामने आना शुरू हो गई है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। कंदील अब्बास साहब का कहना यह है कि स्पीकर को यह अख्तियार हासिल है कि वो कोई रेफरेंस आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। स्पीकर ने भी अपने फैसले में कहा है कि स्पीकर का मनसब पोस्टमैन का मनसब नहीं है, कि जो भी रेफरेंस उसके पास आए वो मिन वन इलेक्शन कमीशन को भेज दे, बल्कि उसको मुनसिफाना फैसला करना होता है। वो अपनी फिक्र से अपने दिमाग से फैसला करेगा कि नाअहली का सवाल उठता है या नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि स्पीकर जो हैं उनका काम महज एक पोस्टमैन का नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि स्पीकर किसी भी मामले के जितने भी अवाकब व जवानब हैं उनको नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी से कोई फैसला दे दें। यह मर्जी की बात नहीं है, माइंड की बात भी ये नहीं है, ये दलील की बात है। बेसिक बात यह है कि जब अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि 63(1)(g) जो है वो अप्लाई हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि एक तनाज़ा जो है वो तो मौजूद है, तनाजा तो पैदा हो गया है, जब तनाजा पैदा हो गया है तो उसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, और इस यहाँ ये मौका नहीं है कि स्पीकर जो है वो अपनी जाती राय जो है वो उस पर ठोंस दें। उनको कोई फैसला करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि अदालत ने कहा क्या है। जब अदालत ने एक मामला इस तरीके से उठाया है जिसमें वो मामला मुतनाज़े हो गया है तो उस तनाज़े का फैसला होना चाहिए। दूसरी ये बात भी सही नहीं है कि स्पीकर के फैसले पर किसी को कोई राय देनी या किसी अदालत में चैलेंज करना ये गलत है, ये बात सही नहीं है। अदालत जहाँ तक ताल्लुक है असेंबली के किसी भी फैसले का, वो इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि असेंबली के फैसले को अदलिया ने कालेअदम करार दिया है। सो मैं समझता हूँ कि अगर असेंबली का फैसला जो है वो कालेअदम हो सकता है तो स्पीकर की राय जो असेंबली में डिस्कस नहीं हुई है, जिस पर कोई फैसला नहीं किया गया असेंबली की तरफ से, वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आगे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये एक मुतनाज़े मामला है, तो जो मुतनाज़े मामला होता है उसको हल करना चाहिए। तनाज़ा को हल करना बहुत ज़रूरी है, और वो हल कहाँ हो सकता है? वो इलेक्शन कमीशन में हो सकता है, वो अदलिया में हो सकता है, या कहीं और। ये फैसला करना तो वकला का काम है, कानून दानों का काम है, लेकिन ये बात कि ये तनाज़ा जो है ये मौजूद है, सो अगर तनाज़ा मौजूद है तो उसको हल भी करना चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अदलिया का जो फैसला है उसको उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से वो लिखा गया है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि तजहीक हुई है, कोई माने या ना माने तजहीक तो हुई है, और अगर तजहीक हुई है तो 63(1)(g) जो है वो अप्लाई होगी, और जब वो अप्लाई होगी तो स्पीकर को ये हक हासिल नहीं है कि वो फैसले को अपने तक महदूद रखें या अपने तौर पर ही उसको ख़त्म कर दें। मैं समझता हूँ ये मामला आगे जाना चाहिए और उसका सही तरीके से फैसला होना चाहिए ताकि कौम जो है वो किसी तरह के तनाज़े में ही हमेशा ना फंसी रहे। जी
सज्जादुल हसन साहब
जी,
आपने गुफ्तगू सुनी कैसर इमाम साहब की, क्या कहेंगे आप?
जी बात ये है, हमारे यहाँ पर अलमिया ये है कि जो फैसला मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगा वो मुझे कबूल है, जो मेरी मर्जी के मुताबिक होगा मेरी फेवर में होगा वो मुझे कबूल है, जो मेरे खिलाफ होगा वो एक मुतनाज़ा बात होगी, वहां एक इशू खड़ा हो जाएगा। बात असल में ऐसे नहीं है, बात है आईन और कानून की। यहाँ पर जो है स्पीकर जो है वो हाउस की कस्टोडियन है, स्पीकर को आयन ने ये पावर दी है, स्पीकर को आप मैंने या किसी ने पावर नहीं दी, उसको उसको आयन पावर दे रहा है, और ये उसकी डिस्क्रिशन है, वो उनकी मर्जी है। कि अगर ऐसी ही बात थी तो फिर अदालत को भी अभाम नहीं रखना चाहिए था ना अपने डिसीजन में कि जी वो हो सकते हैं, फिर सकते का लफ्ज आता ना उसमें, तो जब अभाम ना होता तो खुद ही इजी डिसीजन होता जाता। जब एक अदालत ने अभाम रख दिया, स्पीकर को एक बात जो है रेफर कर दी, अब अगली तो स्पीकर को पावर आइन ने दी है, इस तो बहस ही नहीं है। अब बात यहां पर हो रही है कि तनाजिया है, मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा तनाजिया है। 248 एक बड़ी वाज़ह चीज है जो आइन में पड़ी हुई है, मेरी समझ से बालातर है कि यह सारी कौम को इस 248 के पीछे लगाकर किस चीज से इस कौम की तवज्जो हटाई गई है, किस बात से इस कौम की तवज्जो हटाई जा रही है? क्या रजिस्ट्रार की एक्सटेंशन से तवज्जो हटाई जा रही है, क्या किसी और इशू से तवज्जो हटाई जा रही है? मेरी समझ से तो ये ज्यादातर चीजें हैं कि एक एक बात जो देखिए, इबहाम तो तब है कि जब आइन वाजे ना हो। पाकिस्तान का आइन इंतहाई वाजे है और वो हर ऑफिस को उसके मुताबिक उसने उसमें गाइडलाइन दी हुई है, तो उस गाइडलाइन के मुताबिक स्पीकर ने जो डिसीजन दिया है वो उनकी पावर है, उन्होंने वो डिसीजन दे दिया है। मैं भी ये समझता हूं कि ये मां सवाए पॉइंट स्कोरिंग के, मुखालफत बराए मुखालफत के, इससे आगे कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, धोखा देने की कोशिश की जा रही है, इस सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश है, इस गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश है। चूंकि इलेक्शन ईयर है, चूंकि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए डिलीवर करना चाह रही है, बिला मकसद रुकावटें रास्ते में बिना जवाब रुकावटें हाइल की जा रही हैं, ये सब चीजें जो है ये इसी कमिंग इलेक्शन का जो है वो शाखसाना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस इशू पर कोई इसमें कोई अभाव है या इसमें कोई बात है। कप्तान स्पीकर ने जो डिसीजन दिया है वो आयन और कानून के मुताबिक, अपनी अकल और समझ के मुताबिक आयन और कानून को मद्देनजर रखते हुए दी है। इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती किसी भी बात में। ये तो फिर हम बहस बराए बहस में चलते जाएंगे। मैंने तो अपनी गुफ्तगू में आगाज में ये गुजारिश कर दी थी कि मैं वकील तो हूं नहीं, ये तो वकला ही इस पर फर्दर बात कर सकेंगे, मगर बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के जो चीज मेरे सामने है, जो मुझे नजर आ रही है, जितना कि मैंने पढ़ा है, जितना कि मैंने सीनियर से दे सुना है, जितना का आइन पाकिस्तान मुझे बताता है, मैं तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये सारी बात जो है आपके गोश गुजार कर रहा हूं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब। कंदील अब्बास साहब, स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया है जिसमें उस वक्त के स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने इस एतराज पर कि वो सजा याफ्ता हैं और ऐवान की रुकनियत और वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाहल हैं, रूलिंग दी थी कि जावेद हाशमी ऐवान की रुकनियत और वजारत उज़्मा के ओहदे दोनों का इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। उनके इस हवाले के बारे में पाकिस्तान में क्या राय पाई जाती है कानूनदानों के दरमियान?
देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया कि इस तरह के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद हैं। जहाँ तक स्पीकर की लीगल अथॉरिटी की बात है तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अथॉरिटी स्पीकर के पास अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको उनके पास है कि किसी भी रुकन ने पार्लियामेंट की अहलियत या ना अहलियत का फैसला वो अपना माइंड अप्लाई करके कर सकें। ये अथॉरिटी उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन जब वो कोई ऐसा फैसला करती हैं तो इसको किसी को पसंद है या नहीं है, इसका फैसला मैं समझता हूं कि खुद अदालतों में जाकर हो सकता है कि वो कानूनी हैसियत उसको हासिल है या नहीं। इसकी किसी की पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है तो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं बननी चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ और दूसरी तरफ स्पीकर की रूलिंग, इनको आपस में कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तोहीन अदालत की बुनियाद पर वो अपनी जगह पर कायम है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, जब तक सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील नहीं आती और उसकी अपील की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार नहीं देती, वो फैसला अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। लेकिन जहां तक स्पीकर की रूलिंग की बात है तो वो रूलिंग उनका हक है, उन्होंने उस हक को अप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि इसके इत्तलाक वज़ीर आज़म पर नहीं होता, वो वज़ीर आज़म रहेंगे। अब इसके ऊपर अगर किसी को एतराज़ है तो जैसा कि हाई कोर्ट में लोग जा चुके हैं और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी लाया जा सकता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन मजमू तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है ये अपनी इरतकाई मनाजिल तय कर रहा है और इसका आगाज़ खुद चीफ जस्टिस की बहाली से हुआ, एक बहुत बड़ा फैसला था और पब्लिक मूवमेंट के बाद चीफ जस्टिस को बहाल किया गया और उसके बाद ऐसा माहौल पैदा हुआ पाकिस्तान में कि एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पार्लियामेंट के सामने आना पड़ा और वहां आके उनको सारी चीजें बताना पड़ी। इसी तरह जो बाद में इश्यूज आए हैं, पार्लियामेंट को फौजी क्यादत को ब्रीफिंग देना पड़ी, इसी तरह वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अदालतों का सामना करना पड़ा, ये सारे चीजें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है वो इरतकाई मनाजिल तय कर रहा है। ये क्राइसिस और मुल्कों में भी आते रहे हैं और पाकिस्तान में भी अभी ये अपनी पीक पर हैं और जाहिर है कि इस तरह के मसाइल जब एक प्रोसेस के साथ गुजरने के बाद अपने फैसलों को उन मरहलों में दाखिल होंगे तो इससे प्रेसिडेंट्स बन जाएंगे, एक मसाले बन जाएंगी और फ्यूचर में इस तरह की जो पेचीदगियाँ उनका सामना नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है उसको स्ट्रीम लाइन और एक लाइन के ऊपर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर इमाम साहब, जनाब जावेद हाशमी केस का हवाला दिया है स्पीकर ने
जी,
और जिसमें उस वक्त के स्पीकर ने जावेद हाशमी पर इस एतराज को कि वो सजा याफ्ता होने की हैसियत से न तो असम्बली की रुकनियत के अहल हैं और न वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए, उस वक्त के स्पीकर ने इस एतराज को मुस्तरद कर दिया और रूलिंग दी कि वो ऐवान की रुकनियत और वजारत उज़्मा दोनों ओहदे के लिए अहल हैं। या तो स्पीकर फहमीदा मिर्जा का ये हवाला गलत है, अगर हवाला गलत है तो फिर ये कहा जाए कि उन्होंने जो हवाला दिया है वो गलत दिया है, अगर उनका हवाला सही है तो फिर एतराज की गुंजाइश कहां रह जाती है?
देखें, ये सारा मामला जो है वो सिर्फ इसलिए पेश आ रहा है कि बाज़ हमारे दोस्तों का ख्याल है, जिनमें मेरे अज़ीज़ दोस्त सजादुल हसन भी शामिल हैं, जो ये फरमा रहे हैं कि कोई इबहाम नहीं है। मैं समझता हूँ इबहाम मौजूद है और उसी को रफ़ा करना चाहिए, और वो इबहाम ये है कि ये मामला जो है ये सिर्फ तौहीन अदालत का नहीं है। तौहीन अदालत केस में सज़ा हो गई जिस तरह से भी हो गई, जिसके मुतल्लिक खुद एतजाज साहब ने कहा है कि वो अब सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं की जा रही, ना ही उसकी वो ज़रूरत समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका एक और अहम मामला वो तज़हीक का है कि तज़हीक का मामला जो है वो फैसले में मौजूद है, और अगर फैसले में तज़हीक मौजूद है तो और तज़हीक का मामला जो है वो आइन में भी मौजूद है कि उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, तो फिर भी इबहाम कहाँ रह गया? और अगर इबहाम नहीं है तो ये मामला, ये जो नुक्ता है तज़हीक वाला, इसको हमारी स्पीकर साहिबा नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? और दूसरी बात ये कि स्पीकर का काम ये सही है कि वो पोस्टमैन नहीं है, वो हर एक मामला जो है वो कमीशन को नहीं भेजेंगी, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो बिला वजह भी रेफरेंस दायर कर देते हैं, जिनकी कोई बेस नहीं होती, जिसमें कोई तनाज़ा नहीं होता, जिसमें कोई मामला कानूनी नुक्ता नहीं होता। इसलिए स्पीकर साहबा को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इस किस्म के मामलात की छान पटक करके वो मामलात को ख़त्म कर दें अगर चाहें तो। लेकिन जिन मामलात में इबहाम मौजूद हो, तनाज़ा मौजूद हो, वो सियासी भी हो, आइनी भी हो, कानूनी भी हो, वो तनाज़ा मौजूद है, अगर उस तनाज़े की मौजूदगी में उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये इख्तियारात से तजावज़ है और ये बात सही नहीं है। इसके लिए जो वो दूसरे रेफरेंस दे रही हैं किसी मजिस्ट्रेट के फैसले का, वो डिफरेंट बात है, और किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला जो है वो उससे कतई डिफरेंट बात है। मैं समझता हूँ दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। असल मामला ये है कि क्या तज़हीक होने के बारे में फैसले में कोई बात है, और अगर कोई बात है तो क्या तज़हीक का मामला जो है वो आइन की रूह से आगे जाना चाहिए या नहीं, अगर जाना चाहिए तो उसको रोकना, इख्तियारात से तजावज़ करना है। ये बेसिक बात है, तौहीन अदालत की बात नहीं है, तज़हीक की अदालत की बात है। इस मामले में स्पीकर साहिबा को खामोश नहीं रहना चाहिए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब। जनाब, ये जो फैसला आया है स्पीकर का और इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिला के देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि अवाम में आपकी पार्टी की इमेज इस फैसले से बेहतर होगी या कमजोर होगी?
स्पीकर ने चूंकि आइन के मुताबिक फैसला किया है तो ला महला पाकिस्तान की आवाम जो है वो आयन ही की बालादस्ती चाहती है। पाकिस्तान की जो लोग हैं वो आयन ही की हुकूमत चाहते हैं और जमहूरियत चाहते हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में दो कानून चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से रिलेटेड लोग जो हैं उनके लिए कानून और है और किसी और पार्टी से रिलेटेड लोगों के लिए, कि वही स्पीकर कौमी असेंबली जावेद हाशमी वाले सारे इशू पे जब रूलिंग देता है वो वेल एंड गुड है, जावेद हाशमी मेंबर भी बन जाता है, वो जावेद हाशमी पीएम भी बन सकता है क्योंकि उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अब यूसुफ रजा गिलानी, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ठीक है जी, यूसुफ रजा जो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप है, कहीं उनको फांसी दे दी जाती है, कहीं उनको कोई और सजा दे दी जाती है। अब उस वक्त तो जावेद हाशमी नून के प्रेसिडेंट थे जब मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जद्दा यात्रा पे गए हुए थे, कौम से आवाम से झूठ बोल के कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, डिक्टेटर के साथ एग्रीमेंट करके जद्दा यात्रा पे बैठे हुए थे। तो बात करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि स्पीकर ही की वो भी रूलिंग है जो जावेद हाशमी से रिलेटेड है, और उसी रूलिंग का हवाला देते हुए मौजूदा स्पीकर ने अपनी आईनी और डिस्क्रिप्शन पावर यूज की है तो उसको ये मामला नहीं है, वो नहीं है, इसको बिला मकसद, इस मामले को जो है वो बिला मकसद जो है वो अजीब बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई ऐसे ही अभाम रहता है। मैं अपने मौके पर फिर कायम हूं कि आपके पास एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, उसका हवाला भी स्पीकर ने दिया है, तो उसके बाद तो मैं समझता हूं कि कतन कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, बात बराए बात की करनी है और बिला मकसद करनी है, तो वो तो फिर जितनी मर्जी बातें आप करते जाएं, जितनी मर्जी बातें आप कर लें, वो तो फिर होती ही रहती हैं और चलती ही रहती हैं। तो मामला इस वक्त नून को तो अपनी बका का मामला है, कहीं कहीं बड़ा मियाँ कहता है मैं वजीर आजम को नहीं मानता, छोटा मियाँ कहता है मैं सदर को नहीं मानता, नून कहती है कि हम पीटीआई को नहीं मानते। यहाँ पर उनको तो अपना पीटीआई उनके कंधों पर सवार है, हिसाब पर सवार है, बात सिर्फ ये चल रही है। और इस सारी सिचुएशन में चूंकि चूंकि पब्लिक में इनके बारे में तसर है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, ये एक ड्रामा कर रहे हैं सियासी, एक पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जी पब्लिक को हम तासर दे सके। वैसे तो आप खुद जानते हैं, आपको भी पता है कि एक टिकट में दो मजे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जिसकी 10 करोड़ आबादी है, उनकी 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 हुकूमत इनके पास है और सेंटर में ये अपोजिशन कर रहे हैं। मकसद मेरा है कि ये एक टिकट में दो मजे लेने वाली बात तो फिर नहीं चलती। ऐसे तो पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पब्लिक अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही बाशऊर है, वो इन सारी चीजों को देखती है, सोचती है, समझती है और इन सारी चीजों के बारे में वो एक राय रखती है और इन सारी चीजों के बारे में पब्लिक के की अपनी एक ओपिनियन है और वो सिर्फ आईन और कानून की बालादस्ती पब्लिक चाहती है और जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत की बका पब्लिक चाहती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह आईन की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, आईन की बहाली के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने इस मुल्क को आईन दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने इस मुल्क में मौजूदा असेंबली ने इस आईन को बहाल किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस आईन के तहफ्फुज़ का अजम किए हुए है और हर कीमत पर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत से मजबूत तर करने में अपना अहम किरदार अदा करती रही है और अदा करती रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब। कंदील अब्बास साहब, अपोजिशन का रुख क्या है? क्या अपोजिशन इस ताल्लुक से कोई तहरीक चलाने जा रहा है?
अब बिल्कुल अपोजिशन की जो जमातें हैं, खुद मुस्लिम लीग नून है और बाकी जमातों की तरफ से इस तरह की बयानात ऑलरेडी सामने आ रहे थे और आज भी इस तरह के कई बयानात सामने आए हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे, लेकिन उसके जवाब में हुकूमती साइड से ये कहा गया है कि वक्त पर पढ़ी जाने वाली नमाज नमाज होती है और अगर लेट हो जाए तो उसको ठोकरें ही टकरें ही कहा जाता है। ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब वो वक्त गुजर गया जब वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो लेट हो चुके इस मामले में। लेकिन इसके बावजूद असल में प्रॉब्लम यह है अपोजिशन जमातों के लिए भी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आवाम की 99% आवाम है, उनका मसला ये रेफरेंस नहीं है, उनका मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं है, उनका मसला स्पीकर की रोलिंग नहीं है, उनका मसला मेमो कमीशन नहीं है, उनका मसला वो इशूज़ नहीं है जो इस वक्त हुकूमती सतह पर और मुल्की सतह पर हाईलाइट हो रहे हैं। उनका मसला है लोड शेडिंग, उनका मसला है महंगाई, उनका मसला है जो बेरोजगारी, उनका मसला है सेहत के मसाइल। पाकिस्तान का आम शहरी जो इन मसाइल में घिरा हुआ है, यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम जब अखबार देखते हैं तो जो हेडलाइन होता है उस पर उनकी नज़र जाती नहीं है, लेकिन वो उनकी नज़र जाती है कि आज बिजली के एक यूनिट पर कितनी कीमत बढ़ चुकी है, आज सेहत के मसाइल में क्या क्राइसिस आ रहे हैं, आज बेरोजगारी के लिए क्या मुश्किल, यानी उनको रोजगार के मसाइल हैं। इस तरह के मसाइल में घिरी हुई अवाम को बिल्कुल अभी ये मेमो कमीशन का एक मजाक बना हुआ था, जैसे इसी तरह रेफरेंस का एक मजाक बना हुआ कि आम पाकिस्तान का शहरी इन चीज़ों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। उसका असल मसला, उसकी जो डेली लाइफ है वो बनी हुई है, उसका लाइफ क्राइसिस का शिकार है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि खुद अपोजिशन भी गुम गुम का शिकार है कि अगर वो इस तरह के इश्यूज को लेकर लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करती है तो आवाम कतन उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए कि आवाम का असल मसला लोड शेडिंग। आज जैसे कि हमने देखा कि पंजाब के वजीर आला ने और जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं उन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ एक रैली जो थी, पब्लिक रैली थी, उसकी क्यादत की और वो रोड पर आए हैं। इसमें उनको देखा है कि उन्हें बहुत सपोर्ट मिली है। इन इश्यूज पर तो लोग अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं या हुकूमती साइड से कोई इकदाम होगा तो उसका साथ देने, लेकिन इस तरह की किसी भी रैली या इस तरह की किसी भी प्रोटेस्ट या तहरीक में अवाम की मैं समझता हूँ शमूलियत मशकूक है कि जिसमें अवाम को खुद अपने मसाइल का हल नजर ना आए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। हमारे पास 1.5 मिनट का वक्त रह गया है। मुनकसिम अपोजिशन
जनाब,
क्या कोई तूफान और सुनामी लाने में कामयाब हो पाएगा?
देखिए जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, बाकायदा इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है, उसमें ये मामला जेरे बहस जरूर आएंगे और लाए जाएंगे खास तौर पर, और उनकी तरफ से खेंचा तानी दोनों तरफों से होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के मौजू के मुताबिक सिर्फ दो ही नुक्ते हैं जो काबले बहस हैं, जेरे बहस आ सकते हैं। अव्वल ये कि तजहीक का मामला और दोयम ये कि खत लिखने का मामला। इन दोनों के बारे में फैसला अभी कौम को, वकला को, हुकूमत को और अदलिया को करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम सज्जादुल हसन साहब और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब के भी शुक्रगुजार हैं। आपने तीनों अफराद की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। जैसा कि कंदील अब्बास साहब ने कहा है कि अवाम का मसला ना रेफरेंस है, ना मेमो कमीशन है, ना कोई और, अवाम के मसाइल दूसरे हैं। अपोजिशन ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मुस्लिम लीग ने इस्लामाबाद की तरफ अवामी तूफान लाने का ऐलान किया था और तहरीक इंसाफ ने सुनामी लाने का ऐलान किया था, लेकिन अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए न कोई तूफान आया और न सुनामी। सुनामी और तूफान अगर पाकिस्तान में लाया जा सकता है तो वो अवाम के हकीकी मसाइल को सामने लाकर और उनको उठाकर लाया जा सकता है। ये सियासी मसाइल शायद किसी तूफान और सुनामी का बायस ना बन सके। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।